एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज ग्रंथ सार में हम एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जिसने अपने जमाने में लोगों को सचमुच में जकड़ लिया था, विल्की कॉलिंस की क्लासिक कृति द वुमन इन व्हाइट।
हाँ बिल्कुल, विल्की कॉलिंस जो चार्ल्स डिकेंस के काफी करीबी दोस्त भी थे।
जी, और वो उस जॉनर, उस विधा के जिसे सेंसेशन नॉवल कहा गया, उसके एक तरह से प्रणेता माने जाते हैं।
सही कहा, सेंसेशन नॉवल मतलब वो कहानियां जो विक्टोरियन इंग्लैंड का जो एक शांत सभ्य सा दिखने वाला चेहरा था ना।
हाँ, बिल्कुल ऊपरी परत।
हाँ, उस परत के पीछे छिपे जो रहस्य थे, जो अपराध थे, जो जुनून थे, उनको उजागर करती थी।
धोखा, गलत पहचान, नाजायज रिश्ते, और खासकर जो महिलाओं के साथ कानूनी अन्याय होता था,
वो सब।
जी हाँ, और द वुमन इन व्हाइट तो इसका शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 1859-60 के आसपास जब ये धारावाहिक मतलब सीरियल की तरह छपा।
हाँ,
किश्तों में।
हाँ, किश्तों में तो इसने वाकई में सनसनी फैला दी थी। कहते हैं लोग अगले अंक का इससे इंतजार करते थे, जैसे आज हम शायद किसी वेब सीरीज के अगले एपिसोड का करते हैं।
बिल्कुल, और कहानी का बैकड्रॉप है विक्टोरियन इंग्लैंड। समाज के नियम बड़े कड़े और महिलाओं के अधिकार वो तो बहुत ही सीमित थे।
तो आज जो हमारी बातचीत है, हमारा इरादा सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो जटिलताएं हैं उनको समझें, जो पात्र हैं उनके मन की यात्रा को महसूस करें।
हाँ, और वो सवाल जो कॉलिंस उठाते हैं उन पर गौर करें, क्योंकि वो सवाल आज भी कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
सही कहा, तो चलें फिर इस रहस्य की दुनिया में पहला कदम रखते हैं।
जरूर, कहानी की शुरुआत ही बहुत नाटकीय है ना।
बहुत ज्यादा। सोचिए जरा, लंदन के बाहर की एक सुनसान सड़क है, आधी रात का वक्त है, चांदनी रात। और तभी एक नौजवान ड्राइंग टीचर है, वॉल्टर हार्टराइट, उसकी मुलाकात होती है एक अजीब सी, बेहद परेशान हाल महिला से, और वो पूरी तरह से सर से पांव तक सफेद कपड़ों में है।
द वुमन इन व्हाइट।
हाँ वही, वो महिला किसी बैरनेट के खिलाफ, मतलब एक तरह के जमींदार कह लीजिए, उसके खिलाफ एक रहस्यमयी चेतावनी देती है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है, जैसे कोई साया हो।
और ये मुलाकात वॉल्टर के जहन पर एक गहरा निशान छोड़ जाती है।
बिल्कुल, और यही यही सफेद साया आगे चलकर पूरे उपन्यास के रहस्य का कह सकते केंद्र बिंदु बन जाता है।
हाँ, इसके फौरन बाद वॉल्टर को एक नौकरी मिलती है, कम्बरलैंड में एक शांत खूबसूरत सी जगह है, लिमरिज हाउस।
जी,
वहां उसे दो सौतेली बहनों को ड्राइंग सिखानी है। एक है लॉरा फेयरली, बहुत खूबसूरत, नाजुक सी और एक बड़ी संपत्ति की वारिस। और दूसरी है मैरियन हेलकॉम्ब, लॉरा की सौतेली बहन। वो पारंपरिक मानकों पर उतनी खूबसूरत शायद नहीं, पर असाधारण रूप से बुद्धिमान है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है और बहुत व्यावहारिक भी।
और जैसे ही वॉल्टर लिमरिज पहुंचता है, उसे एक एक बड़ा झटका लगता है।
क्या?
वो देखता है कि लॉरा फेयरली और वो जो सड़क पर मिली थी रहस्यमयी सफेद महिला, जिसका नाम बाद में पता चलता है एनी कैथरिक,
एनी कैथरिक,
उन दोनों के बीच एक अजीब सी, मतलब अविश्वसनीय, लगभग अलौकिक कह सकते हैं, वैसी समानता है जैसे एक ही चेहरे के दो अलग अलग रूप हों।
अच्छा, यहीं से कहानी में उलझन की पहली गांठ पड़ती है ना?
बिल्कुल, और ये सिर्फ एक इत्तफाक नहीं है, ये समानता आगे चलकर एक हथियार बनने वाली है।
तो कहानी आगे बढ़ती है, वॉल्टर और लॉरा जाहिर है एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके बीच एक मासूम सा प्यार पनपने लगता है। लेकिन एक बहुत बड़ी दीवार है बीच में, लॉरा की सगाई पहले से ही तय है सर पर्सिवल ग्लैडना नाम के एक बैरनेट से।
ओ, और ये वही बैरनेट है?
हाँ, ये वही बैरनेट है जिसके बारे में उस सफेद महिला एनी कैथरिक ने चेतावनी दी थी। तो ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश की कह सकते हैं भूमिका बन रही है।
यहीं पर उपन्यास का वो सेंसेशन वाला पहलू सामने आने लगता है। सर पर्सिवल ग्लाइड, जो बाहर से तो बड़ा सम्मानित आदमी लगता है, असल में वो कर्ज में डूबा हुआ है और एक एक भयानक राज भी छुपा रहा है। उसका इरादा नेक बिल्कुल नहीं है, उसे सिर्फ लॉरा की दौलत चाहिए।
और इस साजिश में उसका साथ देने आता है एक और बहुत ही यादगार किरदार, काउंट फोस्को।
आहा, काउंट फोस्को, क्या कमाल का विलन है वो,
है ना? एक इतालवी काउंट, मोटा सा, अजीबोगरीब शौक हैं उसके, जैसे पालतू चिड़ियों से खेलना, चूहे पालना।
हाँ, लेकिन दिमाग, बेहद शातिर, बुद्धिमान और नैतिक रूप से बिल्कुल खोखला, जीरो।
उसे तो शायद बुराई करने में, अपराध करने में एक तरह का बौद्धिक, एक आर्टिस्टिक सुख मिलता है।
सही कहा। उसकी मौजूदगी से कहानी में रहस्य और खतरे का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। इन दोनों का लक्ष्य एक ही है, किसी भी तरह लॉरा की संपत्ति हड़पना।
और इसके लिए वो प्लान बनाते हैं कि लॉरा और एनी कैथरिक की उस अद्भुत शारीरिक समानता का इस्तेमाल करेंगे।
यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है जो उपन्यास के केंद्र में है। पहचान क्या है? आइडेंटिटी। क्या ये सिर्फ आपका नाम है, आपका चेहरा, या वो कानूनी कागजात जो आपकी पहचान बताते हैं,
या कुछ और? और क्या इस पहचान को छीना जा सकता है? क्या इसे पूरी तरह से मिटाया जा सकता है?
बिल्कुल। कहानी का अगला पड़ाव आता है ब्लैकवाटर पार्क। सर पर्सिवल की एक डरावनी सी जागीर है। शादी के बाद लॉरा को वहीं रहना है।
और मेरियन?
मेरियन भी अपनी बहन की हिफाजत के लिए उसके साथ जाती है, लेकिन वहां का माहौल शुरू से ही बहुत तनाव भरा है, बोझिल सा। सर पर्सिवल लगातार लॉरा पर दबाव डाल रहा है कि वो कुछ कागजों पर दस्तखत कर दे, जिससे उसकी संपत्ति उसके नाम हो जाए।
और लॉरा वो क्या करती है?
लॉरा मना करती रहती है। और फिर आता है उपन्यास का वो सीन जो शायद सबसे ज्यादा फेमस है।
कौन सा?
छत वाला।
हाँ,
वही, मैरियन रात में चुपके से लाइब्रेरी की छत पर चढ़ जाती है। नीचे सर पर्सिवल और काउंट फोस्को बात कर रहे होते हैं।
और वो उनकी बातें सुन लेती हैं।
हाँ, वो लॉरा के खिलाफ उनकी पूरी साजिश सुन लेती है। ये मैरियन के साहस का एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन उस रात भयंकर बारिश हो रही होती है और उसमें भीगने की वजह से वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। उसे तेज बुखार आ जाता है।
और मैरियन की यही बीमारी ये उन खलनायकों को मौका दे देती है अपना सबसे घिनौना, सबसे क्रूर दांव चलने का।
बिल्कुल, यहीं पर पहचान की अदला बदली का वो भयानक खेल खेला जाता है, जो विक्टोरियन समाज और उसके कानूनों पर एक तीखा तंज भी है।
कैसे करते हो ये?
देखिए, मैरियन तो बिस्तर पर है लाचार। इसी बीच उन्हें एनी कैथरिक का भी पता चल जाता है, जो गंभीर दिल की बीमारी से जूझ रही है और उसकी हालत बहुत खराब है।
अच्छा,
तो फोस्को और ग्लाइड इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। वो लॉरा को किसी बहाने से, धोखे से लंदन ले जाते हैं और वहां उसे नशीली दवा देकर बेहोश कर देते हैं।
हे भगवान।
उधर ब्लैकवाटर पार्क में एनी कैथरिक की प्राकृतिक रूप से मौत हो जाती है। अब देखिए, शैतानी दिमाग, वे एनी के शव को लॉरा फेरली के नाम से दफना देते हैं, बकायदा अंतिम संस्कार करके। हाँ, और वो जो नशे में धुत बेसुध लॉरा है, उसे उसी पागलखाने, मतलब मेंटल असाइलम में, एनी कैथरिक के नाम से भर्ती करा देते हैं, जहां से असली एनी कभी भागी थी।
ये तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जिंदा इंसान को कानूनी तौर पर मृत घोषित कर दिया और उसकी जगह एक लाश दफना दी,
जी,
और जिंदा लॉरा को एक पागलखाने में फेंक दिया, वो भी किसी और की पहचान के साथ।
ये दिखाता है कि उस जमाने में खासकर महिलाओं की स्थिति कितनी कमजोर थी।
हाँ,
उनकी पहचान, उनकी आवाज, उनकी जायदाद, सब कुछ मर्दों के हाथ में था, और कानूनी दाव पेच से उन्हें सचमुच मिटाया जा सकता था।
संपत्ति अब सर पॉसिबल की हो गई, प्लान कामयाब।
हाँ, उनका प्लान कामयाब हो गया, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती।
नहीं,
नहीं, लगभग एक साल बीत जाता है। वॉल्टर हार्टराइट विदेश से लौटता है। उसे लॉरा की मौत की खबर मिलती है। जाहिर है, उसका दिल टूट जाता है। वो उसकी कब्र पर जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है मैरियन हेलकोम से।
मेरियन से वो वहां क्या कर रही है?
और मैरियन उसे वो भयानक सच बताती है जो किसी बुरे सपने जैसा है, कि लॉरा मरी नहीं है, वो जिंदा है पर उस पागलखाने में कैद है।
बाप रे, यहीं से उपन्यास का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, न्याय की तलाश। अब मंच पर फिर से वॉल्टर और मैरियन हैं।
हाँ, लेकिन ये पहले वाले वॉल्टर और मैरियन नहीं है। वॉल्टर अब सिर्फ एक रोमांटिक कलाकार नहीं रहा, वो एक दृढ़ निश्चयी जासूस बन चुका है, बदला हुआ इंसान।
और मैरियन?
वो तो मुझे लगता है शुरू से ही कहानी की असली हीरोइन है। विक्टोरियन समाज भले ही उसे उसकी तथाकथित कम खूबसूरती के लिए जज करता हो,
बिल्कुल, पर उसकी बुद्धि, उसका साहस, उसकी वफादारी, वो बेमिसाल है। वो लॉरा की ढाल है और अब वॉल्टर की साथी भी, एक टीम।
हाँ, एक मजबूत टीम। दोनों मिलकर लॉरा को उस पागलखाने से छुड़ा लाते हैं। लेकिन लॉरा बेचारी मानसिक रूप से बहुत बुरी तरह टूट चुकी है, ट्रॉमा में है।
हाँ, स्वाभाविक है।
उसकी याददाश्त बिखरी हुई है, वो हर वक्त डरी सहमी रहती है। अब इन तीनों का एक ही लक्ष्य है, लॉरा की असली पहचान दुनिया के सामने लाना और सर पर्सिवल के झूठ का पर्दाफाश करना।
तो वॉल्टर अब उस राज की तह तक जाने की कोशिश करता है जिसका जिक्र एनी कैथरिक ने शुरू में किया था, सर पर्सिवल का राज।
जी, और वॉल्टर कामयाब भी होता है। वो सुराग ढूंढते ढूंढते पता लगा लेता है कि सर पर्सिवल के माँ बाप की शादी कानूनी तौर पर कभी हुई ही नहीं थी।
मतलब
ये कि सर पर्सिवल एक नाजायज औलाद है और उसे ना तो अपनी सर की उपाधि का कोई हक है, ना ही अपनी संपत्ति का। सब झूठ पर टिका था।
ये तो बहुत बड़ा राज है।
हाँ, और जैसे ही ये राज खुलने का डर होता है, सर पर्सिवल बौखला जाता है। वो सबूत मिटाने के लिए चर्च के रजिस्टर रूम, जहाँ शादी के रिकॉर्ड होते हैं, वहाँ आग लगा देता है। लेकिन वो खुद ही उसी आग में फंसकर जल मरता है। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एक खलनायक का अंत तो हुआ।
लेकिन असली मास्टरमाइंड काउंट फोस्को, वो तो अभी भी आजाद है।
हाँ, वो धूर्त लोमड़ी अभी बाहर है, और वही एकमात्र व्यक्ति है जो कानूनी तौर पर लॉरा की पहचान को बहाल करने में मदद कर सकता है, क्योंकि वही पूरी साजिश का गवाह है।
तो अब वॉल्टर का सामना होता है काउंट फोस्को से। ये सीधी लड़ाई नहीं है, ये दिमागी लड़ाई है।
बिल्कुल, वॉल्टर जानता है कि वो सीधे रास्ते से फोस्को जैसे शातिर इंसान को नहीं हरा सकता।
तो वो क्या करता है?
वो एक अलग रणनीति अपनाता है। उसने खोजबीन करके फोस्को का भी एक गहरा राज पता लगा लिया है।
फोस्को का राज हो क्या?
काउंट फोस्को असल में इटली के एक खुफिया क्रांतिकारी संगठन, द ब्रदरहुड कहते हैं उसे, उसका एक भगोड़ा जासूस है।
अच्छा,
उसने अपने संगठन को धोखा दिया था।
तो वॉल्टर
इस जानकारी का इस्तेमाल करता है फोस्को को ब्लैकमेल करने के लिए। वो फोस्को से कहता है कि अगर तुम पूरी साजिश का लिखित इकरारनामा दे दो, सब सच बता दो,
हाँ,
तो मैं तुम्हें इंग्लैंड से सुरक्षित निकल जाने दूंगा और तुम्हारा राज द ब्रदरहुड को नहीं बताऊंगा।
और फोस्को मान जाता है।
फोस्को, जो शायद वॉल्टर की इस बदली हुई दृढ़ शख्सियत और उसकी बुद्धिमानी की मनी मन इज्जत भी करने लगा है, वो
हाँ,
मान जाता है। उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। वो सब कुछ लिखकर दे देता है, एक पूरा कबूलनामा, जिससे लॉरा पूरी तरह निर्दोष साबित हो जाती है।
और फिर
फोस्को का क्या होता है?
फोस्को अपना वादा निभाता है, देश छोड़कर चला जाता है। लेकिन बाद में कहानी के अंत में पता चलता है कि द ब्रदरहुड के लोगों ने उसे आखिरकार ढूंढ निकाला और मार डाला। उसके कर्मों का फल उसे मिल गया।
और लॉरा, फोस्को के कबूलनामे से लॉरा को उसकी पहचान, उसकी संपत्ति, उसका सम्मान, सब कुछ वापस मिल जाता है। लॉरा का एक सनकी चाचा होता है। उसकी मौत के बाद लिमरिज हाउस की संपत्ति का वारिस अंततः वॉल्टर और लॉरा का बेटा बनता है।
तो अंत भला तो सब भला, तीनों नायक वॉल्टर, मैरियन और लॉरा लिमरिज में शांति से अपना जीवन जीते हैं।
हाँ, न्याय मिलता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये न्याय कानून के स्थापित सीधे रास्तों से नहीं मिलता।
सही कहा, ये व्यक्तिगत साहस, अटूट निष्ठा और सच के लिए लड़ने के जज्बे से मिलता है।
ये तो हुई कहानी की पूरी रूपरेखा एक तरह से। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में कहा था, ये सिर्फ एक थ्रिलर कहानी नहीं है।
नहीं, इसमें कॉलिंस ने कई गहरे विषयों को छुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा तो पहचान का ही है, आइडेंटिटी का।
हाँ, कि हमारी पहचान कितनी नाजुक चीज होती है, खासकर उस दौर में महिलाओं की पहचान। कैसे उसे कानूनी और सामाजिक शक्तियों द्वारा मिटाया जा सकता है, बदला जा सकता है।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है विक्टोरियन समाज और उसके जो कानून थे उन पर एक तरह का व्यंग।
जी,
लॉरा का केस दिखाता है कि कानून कैसे कई बार सच को देखने में नाकाम रहता है और कैसे पावरफुल लोग कमजोरों का शोषण करने के लिए कानून का ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाँ, और न्याय पाने के लिए वॉल्टर और मैरियन को अक्सर कानून के दायरे से बाहर जाकर अपने तरीके से काम करना पड़ता है। नैतिक अधिकार बनाम कानूनी अधिकार का सवाल उठता है।
लैंगिक भूमिकाएं, जेंडर रोल्स, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। आप देखिए लॉरा और मैरियन का कॉन्ट्रास्ट।
हाँ, लॉरा उस जमाने की आदर्श विक्टोरियन नारी है, खूबसूरत, विनम्र, शालीन, पर काफी हद तक निष्क्रिय, दूसरों पर निर्भर।
बिल्कुल, और वहीं मैरियन ठीक इसके उलट है। पारंपरिक रूप से सुंदर नहीं, पर बुद्धिमान, साहसी, स्वतंत्र सोच वाली, एक्शन लेने वाली।
कॉलिंस मैरियन के किरदार के जरिए ये दिखाते हैं कि महिलाओं में कितनी क्षमता हो सकती है, जिसे समाज अक्सर या तो देखता नहीं या फिर दबा देता है। मैरियन का चरित्र आज भी बहुत रिलेटेबल और प्रेरणादायक लगता है।
बहुत ज्यादा। और एक और थीम जो बार बार आता है वो है दिखावा बनाम असलियत का,
हाँ
अपियरेंस वर्सेस रियलिटी।
हाँ जैसे सर पर्सिवल और काउंट फोस्को, बाहर से कितने सभ्य, कितने सम्मानित लगते हैं, पर अंदर से कितने क्रूर और अनैतिक हैं।
यहाँ तक कि वो खूबसूरत लिमरिज हाउस भी, वो भी साजिशों का गढ़ बन जाता है। ब्लैक वाटर पार्क तो है ही डरावना। मतलब कॉलिन्स हमें बार बार याद दिलाते हैं कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। सतह के नीचे बहुत कुछ छिपा हो सकता है।
और इन सब बातों को कहने का, कहानी सुनाने का कॉलिन्स का तरीका भी बहुत अनोखा है। उन्होंने ये कहानी किसी एक नैरेटर से नहीं कहलवाई।
सही कहा, ये इसकी सबसे खास बातों में से एक है। कहानी कई किरदारों के नजरिए से उनकी अपनी आवाज में सामने आती है। जैसे वॉल्टर अपनी गवाही देता है, फिर मैरियन अपनी डायरी के पन्ने शेयर करती है।
हाँ, यहाँ तक कि कुछ छोटे किरदार जैसे वकील वगैरह, वो भी अपनी बात रखते हैं। और तो और, खुद विलेन काउंट फोस्को भी अपना पक्ष रखता है।
जी, ऐसा लगता है जैसे हम कोई कानूनी केस की फाइल पढ़ रहे हो जिसमें अलग अलग गवाहों के बयान दर्ज हैं।
इससे कहानी में एक अलग तरह का यथार्थवाद, एक रियलिज्म आता है, और पाठक खुद एक जासूस की तरह महसूस करता है। उसे अलग अलग बयानों को जोड़कर सच तक पहुंचना होता है।
हाँ, और हर आवाज का अपना एक रंग है, अपना एक नजरिया है, अपना एक पूर्वाग्रह भी हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प तकनीक है।
कॉलिन्स ने दूसरी साहित्यिक युक्तियों का भी खूब इस्तेमाल किया है, जैसे पूर्वाभास, फोरशैडोइंग।
हाँ बिल्कुल, कहानी की शुरुआत में ही वो सफेद महिला का दिखना, फिर लॉरा और एनी की वो रहस्यमयी समानता, ये सब जैसे आने वाले खतरे की तरफ इशारा करते हैं।
प्रतीकवाद सिंबोलिज्म भी है, खासकर सफेद रंग का इस्तेमाल।
जी हाँ, सफेद रंग यहाँ लॉरा की मासूमियत और पवित्रता का प्रतीक भी है, तो एनी कैथरिक के भूतिया दिखने का भी, और फिर वो कफन और पागलखाने की बेरंग दीवारों का भी प्रतीक बन जाता है। एक ही रंग के कितने अलग अलग बल्कि विरोधाभासी अर्थ।
मगर वो माहौल, गॉथिक माहौल जिसे कहते हैं, ब्लैक वाटर पार्क का वो उदास रहस्यमयी वातावरण, बंद दरवाजों के पीछे छिपे राज, वो मानसिक पीड़ा, एक शक्तिशाली करिश्माई खलनायक, ये सब मिलकर कहानी को और भी ज्यादा प्रभावी और रोमांचक बनाते हैं।
उपन्यास की शुरुआत में वॉल्टर का एक कथन है जो मुझे लगता है पूरी कहानी का सार कह देता है।
कौन सा?
वो कहता है, यह कहानी है कि एक महिला का धैर्य क्या सहन कर सकता है और एक पुरुष का संकल्प क्या हासिल कर सकता है।
हाँ, दिस इज द स्टोरी ऑफ व्हाट अ वुमन्स पेशेंस कैन एंड्योर एंड व्हाट अ मैन्स रेजोल्यूशन कैन अचीव। ये वाकई में लॉरा के धैर्य और वॉल्टर और मैरियन भी के संकल्प की ही तो कहानी है।
बिल्कुल, सच कहूं तो द वुमन इन व्हाइट एक ऐसा उपन्यास है जो पाठक को भावनाओं के कई स्तरों से गुजारता है। आपको रहस्य का रोमांच महसूस होता है, अन्याय पर गुस्सा आता है, किरदारों के लिए हमदर्दी पैदा होती है,
और अंत में जब न्याय मिलता है तो एक गहरी संतुष्टि मिलती है। लॉरा की पीड़ा देखकर मन बेचैन होता है, तो मैरियन का जो साहस है, उसकी जो बुद्धि है, वो हमें वाकई प्रेरित करती है।
ये उपन्यास आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। पहचान असल में क्या है? क्या वो इतनी आसानी से छीनी जा सकती है, बदली जा सकती है?
हाँ, और क्या समाज का जो सभ्य दिखने वाला चेहरा है, उसके पीछे हमेशा सब कुछ वैसा ही होता है जैसा दिखता है? ये हमें याद दिलाता है कि न्याय के लिए अक्सर लड़ना पड़ता है, वो थाली में सजाकर नहीं मिलता।
ये कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत साहस, बुद्धि और निष्ठा, ये बड़ी से बड़ी संस्थागत बाधाओं को भी चुनौती दे सकती हैं, उन्हें पार कर सकती हैं।
और ये भी कि सत्य और पहचान भले ही कितने नाजुक क्यों ना लगें, पर मानवीय रिश्ते जैसे वॉल्टर, मैरियन और लॉरा के बीच का वो अटूट बंधन, उनमें इतनी ताकत होती है कि वो इन्हें फिर से स्थापित कर सकें।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।